जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय हो सोदानंदन जय ब्रज जन रंजन नोदान जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर परिहंस परिव्राज बचाज अष्टोत्तर सस्त्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेतु लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 23। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक संख्या 11। तस्या नया भगवता परिशुद्ध परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या नहीं बन रहा। सत्वात्मनस तदनु संस्मरणान नुपूर्त्यां सत्वात्मनस तदनु संस्मरणानुपूर्त्यां ज्ञानं विरक्ति मदभूम निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशं तस्या नया भगवता परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्ति बदमुं निशितेन येन चिच्छेद संशय पदं निज जीव कोशं तस्या नया भगवता परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्ति मदभून निशितेन येन चिच्छेद संशय पदं निज जीव कोशं।
బెస్ట్. Vaishnav Devi, शब्दार्थ बोलिए. तस्य उनका, अनया इससे, भगवतः भगवान का, परिकर्म भक्ति के कार्य, शुद्ध शुद्ध दिव्य सत्व अस्तित्व आत्मनः मन का, तत् तत् परमेश्वर का अनुसंस्मरण, निरंतर स्मरण, अनुपूर्तिया ठीक से किए जाने पर, ज्ञानम ज्ञान, विरक्ति अनासक्ति मत रखते हुए अभूत प्रकट हुआ, निश्चितेन उत्कट कार्यों से, येन जिससे, चिच्छेद पृथक होते हैं, संशय पदम संदेह की स्थिति, निज अपनी जीव कोशम जीवात्मा का आवरण, कोश अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे. इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए. इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए. तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे. इस श्लोक के शब्दों पर ध्यान दीजिए. सबसे पहला शब्द क्या है? तस्य. दूसरा शब्द है अनया, है ना. तो तस्य का मतलब उसका, हा? तो किसका? पृथु महाराज का. तस्य का मतलब उनका, यानी पृथु महाराज का. अनया का मतलब इसके द्वारा, इसके द्वारा. अब यहाँ कहा गया इसके द्वारा, तो प्रश्न उठता है किसके द्वारा. तो पिछले श्लोक में बात बताई गई थी कि भक्तिर भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवत, कि उनको भगवान परम ब्रह्म में अनन्य भक्ति प्राप्त हुई. पृथु महाराज को भगवान परम ब्रह्म में अनन्य विषया भक्ति प्राप्त हुई, है ना. तो पिछले श्लोक में जो बात आई है तो उसी के विषय में कहा गया अनया, यानी इसके द्वारा. समझ रहे हैं? अनया, इस श्लोक में जो अनया शब्द है कि इसके द्वारा, तो वो पिछले श्लोक से संबंधित है. पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है, नहीं, पृथु महाराज के बारे में बताया गया है कि उनको भगवान के प्रति अनन्य विषया भक्ति प्राप्त हुई, अनन्य भक्ति प्राप्त हुई, है ना. तो अब क्या समझेंगे? अनया का मतलब अनन्य भक्तिया, है ना. तो तस्य अनया मतलब उन पृथु महाराज की अनन्य भक्ति के द्वारा, भगवतः परिकर्म, भगवतः का मतलब भगवान के, और परिकर्म का मतलब है परिचर्या, सेवा, सेवा के कार्य, तो अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान की परिचर्या की, परिकर्म किए। तो शुद्ध सत्व आत्मनः, शुद्ध सत्व आत्मनः, तो आत्मनः का मतलब है मन। कभी कभी आत्मा का अर्थ मन होता है, तो उनका जो मन है वो शुद्ध सत्व में आ गया, शुद्ध सत्व में आ गया। तो प्रभुपाद व्याख्या करेंगे तात्पर्य में शुद्ध सत्व का अर्थ क्या है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान की जो सेवा की, परिक्रम किया, उससे उनका जो मन है वो शुद्ध सत्व में आ गया। शुद्ध सत्व आत्मनः तत् अनुसंस्मरण, तत् अनुसंस्मरण, तत् का मतलब है उनका। अब किसका? भगवान का। अनुसंस्मरण, अनुसंस्मरण का मतलब लगातार संस्मरण, संस्मरण स्मरण, सम्यक रूप से स्मरण, संस्मरण। स्मरण को जब सम्यक रूप से किया जाता है, सही तरीके से किया जाता है, तो संस्मरण कहलाता है। तो तत् और तत् का मतलब उन भगवान का। अनुसंस्मरण अनुपूर्तिया, अनुपूर्तिया ये अनुपूर्तिया विशेषण उसी भक्ति के बारे में, अनया यानी अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान की सेवा की है, वो अनन्य भक्ति कैसी है? तत् अनुसंस्मरण अनुपूर्तिया, कि भगवान के निरंतर स्मरण के द्वारा जो भरी जा रही है, भक्ति को जो है भरा जा रहा है, लगातार भरा जा रहा है। भक्ति को लगातार भरा जा रहा है, कैसे? अनुसंस्मरण अनुपूर्तिया, अनुपूर्तिया का मतलब पूर्ति, लगातार पूर्ति हो रही है भक्ति में, है ना, या उसको कहें पुष्ट हो रही है, पूर्ति हो रही है, भरी जा रही है भक्ति तो पुष्ट हो रही है। अनुपूर्तिया, तो उस अनन्य भक्ति के द्वारा जो भगवान के निरंतर स्मरण के द्वारा जिसकी पूर्ति लगातार हो रही है, उसके द्वारा परिक्रम है, भगवान की सेवा के द्वारा उनका जो मन है वो शुद्ध सत्व में आ गया। और फिर ज्ञानम विरक्ति मत अभून, अभूत, अभूत का मतलब होता है हुआ, उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ज्ञानम, ज्ञानम अभूत, उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस भक्ति के द्वारा उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे गीता में भगवान ने कहा भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, तो भक्ति के द्वारा कोई मुझे जानता है मैं कौन हूँ और कैसा हूँ तत्व से, तो वो तत्व ज्ञान उनको हुआ। किसके द्वारा? उस अनन्य भक्ति के द्वारा जिसकी पूर्ति निरंतर भगवान के स्मरण के द्वारा हो रही थी। ज्ञानम विरक्तिमत अभूत, और वो ज्ञान कैसा है? विरक्तिमत है। विरक्तिमत का मतलब है विरक्ति से युक्त है। श्रीमद, जैसे बोलते श्रीमद, श्रीमद भक्ति वेदांत, तो श्रीमद या श्रीमान का मतलब है श्री युक्त है। उसी प्रकार से विरक्तिमत का मतलब है विरक्ति से युक्त है। जैसे भगवान बोलते हैं जिसके पास भग हो, भगवान बोलते हैं, उसी प्रकार से भगवत जिसके पास भग है, श्रीमत जिसके पास श्री है, विरक्तिमत। ज्ञान कैसा है? विरक्तिमत, विरक्ति के साथ है, विरक्ति से युक्त है। उस ज्ञान में क्या है? विरक्ति है। ज्ञानम विरक्तिमत अभून निश्चितेन येन, और उस निश्चितेन, निश्चितेन का मतलब तीव्र या तीखा, निश्चितेन येन, जिस तीखे ज्ञान के द्वारा जिस छेद संशय उन्होंने काट डाला, जैसे ज्ञान रूपी तलवार गीता में भगवान ने कहा है ज्ञानासिनात्मना, ज्ञान की तलवार के द्वारा काटो अपने संशयों को काटो। तस्माद ज्ञान सम्भूतम हृस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वेनम संशयम, कि चित्वा कि संशय को छेदन करके उत्तिष्ठ भारत, चित्वेनम संशयम योगम आदिष्ट उत्तिष्ठ भारत, कि तुम संशय को छेदन करके खड़े हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चिच्छेद, चिच्छेद का मतलब काट डाला। क्या काट डाला? संशय पदम, जो संशय का स्थान है। गीता में तो भगवान ने कहा कि ज्ञान की तलवार के द्वारा संशय को काटो, यहाँ पर कहा गया है कि संशय के स्थान को काट डाला, क्या है, निज जीव कोषम, अपना जीव कोष काट डाला, अपना जीव कोष के अंदर अपना सूक्ष्म शरीर काट डाला उन्होंने। तो मतलब जीव आत्मा जो है अब शुद्ध स्थिति में आ गया, उसका जो बंधन है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार, जो भौतिक मन बुद्धि अहंकार हैं, तो उस कोष को उन्होंने काट डाला, तो शुद्ध मन बुद्धि अहंकार ये सब शुद्ध अवस्था में हो गए, तो उनका जो है शुद्ध है जो जीव आत्मा है वो प्रकट हो गया, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। नारद पंचरात्र में भगवान की भक्ति की उपमा महारानी से दी गई है। नारद पंचरात्र में भगवान की भक्ति की तुलना किससे दी गई है, महारानी से। जब महारानी दर्शन देती हैं तो अनेक सेविकाएं उसके साथ रहती हैं। रानी महारानी कभी अकेली नहीं होंगी, उनके अनेक दासियां होंगी, सेविकाएं होंगी, है ना। और ये सेविकाएं क्या हैं, ऐश्वर्य मुक्ति और योग सिद्धियां। भक्ति महारानी की सेवा में क्या रहती हैं, ऐश्वर्य, सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, मुक्तियां हैं और योग शक्तियां हैं, ये भक्ति महारानी की सेवा करती हैं। तो अगर कोई भक्ति महारानी को प्रसन्न कर ले तो उसको ये अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, ऐश्वर्य मुक्तियां और योग शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, कर्मी लोग भौतिक सुख में बहुत लिप्त रहते हैं। कर्मी का मतलब क्या है, भुक्ति जो पाना चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो भुक्ति कामी और मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, तीन प्रकार के लोग अशांत हैं, भुक्ति कामी कर्मी जो कर्मी है, और मुक्ति कामी ज्ञानी, और सिद्धि कामी योगी, है ना। सकल अशांत, ये सभी अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त जो है ना तो भुक्ति कामी है, ना मुक्ति कामी है, ना सिद्धि कामी है। कृष्ण भक्त निष्काम, वो किसी प्रकार का कामी नहीं होता, निष्काम होता है, अतएव शांत, इसलिए शांत होता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो कर्मी लोग हैं वो भौतिक सुख में बहुत लिप्त होते हैं, और ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के इच्छुक रहते हैं, यानी मुक्ति कामी। ज्ञानी क्या है, मुक्ति कामी है, यानी भौतिक बंधन से छुटकारा पाने की कामना करते हैं, और योगी आठ प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। क्या, कौन से कामी, सिद्धि कामी, आठ प्रकार की योग सिद्धियां पाना चाहते हैं, तो वे तीनों कामी हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये तीन लोग हैं जो लालायित हैं, जो कर्मी हैं वो भुक्ति के लिए लालायित हैं, और ज्ञानी वो मुक्ति के लिए लालायित हैं, और योगी सिद्धियों के लिए लालायित हैं। आगे नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कामना नहीं करता है लेकिन उसको सब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, जो जिनको कर्मी चाहता है, पाना चाहता है, उसको प्राप्त हो जाते हैं भक्त को। और दार्शनिक चिंतन भी प्राप्त हो जाता है, दार्शनिक चिंतन यानी जो ज्ञानी है, तो जिस दार्शनिक चिंतन के द्वारा वे मुक्ति पाते हैं तो वो दार्शनिक चिंतन भी भक्त को अपने आप प्राप्त हो जाता है, और योगाभ्यास भी प्राप्त हो जाता है, यानी सिद्धियाँ। तो ऐश्वर्य मुक्ति और योग शक्तियाँ उसे स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। अतः श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण करुणामृत में प्रार्थना की है। बिल्व मंगल ठाकुर एक प्राचीन भक्त हुए हैं, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है, कृष्ण करुणामृत। ये कृष्ण करुणामृत ये ग्रंथ लुप्त हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो कृष्ण करुणामृत लेकर के आए थे। तो कृष्ण करुणामृत सोचिए कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है। कृष्ण करुणामृत में जो है बिल मंगल ठाकुर ने कृष्ण की विशेष प्रार्थनाएं की, कृष्ण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की हैं, ना। तो कृष्ण करुणामृत में देखिए एक प्रार्थना क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हों, फिर तो सकाम कर्मों के फल तथा दार्शनिक चिंतन, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, ये सब मेरे अनुचर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। बिल मंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए तो मुझे आपका दर्शन होगा, भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन होता है, तो मुझे आपका दर्शन होगा, फिर क्या होगा, सकाम कर्मों के फल, धर्म अर्थ काम और ज्ञान का फल मोक्ष, ये सब मेरे अनुचर बन करके मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। आगे भाव ये है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या से संस्कारित होकर भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि भक्ति के बल पर भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, भौतिक शरीर से विरक्त हो गए कौन, पृथु महाराज, ज्ञानम विरक्ति मत, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कैसा, विरक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, और कैसे प्राप्त हुआ, भक्ति के द्वारा, अनया यानी अनन्य भक्ति के द्वारा। तो पृथु महाराज को अनन्य भक्ति के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसमें विरक्ति शामिल है, तो विरक्त हो जाता है। जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तब वो वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ प्रभु के आध्यात्मिक शरीर व्यक्त हो गया कैसे, चिच्छेद निज जीव कोशम, अपना जो सूक्ष्म शरीर का बंधन है उन्होंने काट डाला, तो अपने सूक्ष्म शरीर का बंधन उन्होंने काट दिया तो क्या हुआ, आध्यात्मिक शरीर व्यक्त हो गया। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, क्यों, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो चूंकि ढका हुआ है, और वो आवरण अगर किसी प्रकार से कट जाए, काट दिया जाए, तो आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित होने लगता है, आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित होने लगता है। अभी आध्यात्मिक शरीर हमारा कितना छोटा है, बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है आध्यात्मिक शरीर, है ना, तो क्या है, सिकुड़ गया है ना, और इस कारण से इसको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन वही आध्यात्मिक शरीर जब भगवान की सेवा की भावना पैदा होती है तो आध्यात्मिक शरीर विकसित होने लगता है, तो इसको फिर भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक शरीर ये भगवान की सेवा करने के लिए होता है, जब हमारी सेवा भावना होती है तो आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है, और जब हमारी सेवा की भावना समाप्त हो जाती है तो आध्यात्मिक शरीर हमारा क्या हो जाता है, सिकुड़ करके कितना छोटा हो जाता है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो जाता है, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तो वो वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है, तो फिर उससे आध्यात्मिक कार्य जो भगवान की सेवा के कार्य हैं, दिव्य जीवन के कार्य हैं, वो होने लगते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन और भौतिक बुद्धि से बना हुआ है। हमारा शरीर क्या है, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर ढका हुआ है भौतिक शरीर के द्वारा, और आध्यात्मिक मन ढका हुआ है भौतिक मन के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि ढकी हुई है भौतिक बुद्धि के द्वारा। किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक मन और आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान और योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। कर्म के लाभ क्या है, ऐश्वर्य भुक्ति, और ज्ञान के लाभ क्या है, मुक्ति, और योग के लाभ क्या है, सिद्धियाँ। तो सब भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि भक्त यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कभी भी सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन में नहीं लगता, किंतु वे स्वतः उसके समक्ष सेवा हेतु प्रकट हो जाती हैं। योग सिद्धियां भक्त के सामने आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, यद्यपि वो कुछ प्रयास नहीं करता, क्योंकि बताया गया कि सिद्धि जो भक्ति महारानी है उसकी सब दासियाँ हैं, योग सिद्धियाँ सेविकाएँ हैं। तो भक्ति महारानी को अगर प्रसन्न करते हैं तो जो दासियाँ हैं अपने आप ही सेवा में आ जाती हैं, भक्ति की सेवा में आ जाती हैं। आगे, भक्त किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, किंतु ये ऐश्वर्य उसके समक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। भक्त नहीं चाहता लेकिन ऐश्वर्य आ जाता है उसके सामने। उसे अपने लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपनी भक्ति के कारण वो स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है। तो भक्ति के कारण ब्रह्मभूत हो जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार के ज्ञान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे, अपनी भक्ति के कारण वो स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14:26 में हुई है, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वो प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वो भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। जैसे इसमें बताया गया, सत्वात्मना, उसका जो मन है वो शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है। तो वो मन जो है, जब शुद्ध सत्व में स्थित हो गया तो भगवान के चरण कमलों के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्तिया शब्द का अर्थ यही है, भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वो पद है जो सत्वगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। ये शुद्ध सत्व बोलते हैं, शुद्ध सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण जब शुद्ध हो जाता है तो फिर वो गुण नहीं रह जाता, शुद्ध सत्व कहलाता है। गुण का अर्थ बंधन, रस्सी। तो तीन गुण जीवात्मा को बांधते हैं शरीर के साथ, गुण का मतलब रस्सी, बंधन। तो सत्वगुण जब रजोगुण तमोगुण से मिला रहता है तो सत्वगुण कहलाता है। लेकिन वही रजोगुण तमोगुण से रहित जब शुद्ध हो जाता है तो फिर क्या कहलाता है, शुद्ध सत्व, है ना। तो प्रभुपाल ये लिखते हैं कि शुद्ध सत्व वो पद है जो सत्वगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। सत्वगुण में कोई व्यक्ति कार्य करता है, जैसे गीता में भगवान कहते कार्यमित्येव नियतम कृते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च सत्यागः सात्विको मतः, कि कार्य करना चाहिए। इस भावना से जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कार्यमित्येव कर्म नियतम कृते अर्जुन, कि कार्य करना है, करना ही चाहिए, कर्तव्य की भावना से जब वो नियत कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा फलम च, आसक्ति फल को त्याग करके, तो सात्विक त्याग कहलाता है। तो सात्विक त्याग है ये, या सात्विक कर्म नियतम संग्रहितम अराग द्वेषता कृतम। जो नियत कर्म है आसक्ति से रहित है, बिना राग द्वेष के किया जाता है, नियतम संग्रहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप सुना कर्म है, और फल की कामना के बिना जब कर्म किया जाता है तो सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म है, लेकिन जो शुद्ध सत्व का जो कर्म है वो क्या होता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अंतर है सात्विक कर्म में और शुद्ध सत्व में, अंतर है। सात्विक कर्म कर्तव्य की भावना से किया जा रहा है, बिना फल की कामना के किया जाता है, राग द्वेष के बिना किया जाता है, सात्विक कर्म है सत्वगुण। लेकिन जो निर्गुण कर्म है या शुद्ध सत्व में व्यक्ति कर्म करता है, किस लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसलिए सात्विक सत्वगुण और शुद्ध सत्व में ये अंतर है, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में सत्वगुण परम सिद्धि का सूचक है। इस भौतिक जगत में सत्वगुण ही बहुत बड़ी अवस्था है। क्यों, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये प्रकाशित करता है, निर्मल है, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणक, सुख की आसक्ति से बांधता है, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो सतगुण परम सिद्धि का सूचक है भौतिक जगत में, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है। तो सतोगुण जो है ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन फिर वो सतोगुण क्या बन जाता है, शुद्ध सत्व बन जाता। तो सतोगुण से ही कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो फिर कहाँ आता है, शुद्ध सत्व में आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है, सुन रहे सब लोग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि ज्ञान और वैराग्य पृथ्वी महाराज को प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने संशय को नष्ट किया या अपने जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के बंधन को काटा। तो ज्ञान और ज्ञान के द्वारा जो कि तीव्र तीखी तलवार है ना, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं या भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, वो मुक्त हो जाता है बंधन से, भक्ति के द्वारा ही बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको ज्ञान और विरक्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है। तो बहुत समय ज्ञानी को बहुत समय लगेगा है? क्या ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करता रहता है, विश्लेषण करता रहता है। क्या विश्लेषण करता रहता है, ये जितने भी रूप हैं ये भौतिक रूप हैं, ये दूषित हैं, अशुद्ध हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है, इस प्रकार से भोगों से वो विरक्ति का अभ्यास करता है ज्ञान के द्वारा। कि जितने भी भौतिक सुख हैं ये जन्म मरण का बंधन देने वाले हैं, तो वो विरक्ति का बहुत अभ्यास करता है ज्ञानी, तब विरक्त हो पाता है और अंत में इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुँच सकता है। किंतु भक्त को ये सब झंझट नहीं करनी पड़ती, अपनी भक्ति के बल पर वो बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। उससे विरक्ति और ज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मभूत अवस्था है। तो भगवान ने कहा ना गीता में, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति इत्येतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो ब्रह्मभूत अवस्था वो प्राप्त कर लेता है। आगे, योगी तथा ज्ञानी अपने स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। जो योगी हैं जो योग सिद्धि पाना चाहते हैं और जो ज्ञानी जो मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। वो स्पष्ट नहीं उनको पता चलता कि वास्तव में हम हैं क्या। अब ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि वेद मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो अपने को परम सत्य सोचता है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, मैं वही परम ब्रह्म हूँ, जबकि परम ब्रह्म ब्रह्म से ऊपर हैं और हम उनके सेवक हैं। तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर लेकिन मैं किसी का सेवक हूँ, तो ये ज्ञानी को पता नहीं, ज्ञानी संशय में रहता है, तो भूल से अपने को सर्वोच्च समझने लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो अपने को सर्वोच्च, ब्रह्म का अर्थ सर्वोच्च समझता है। जो योगी हैं तो वो भी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर वो भ्रमित हो जाते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो योग सिद्धियों के द्वारा भी वो संशय ग्रस्त रहते हैं। तो ज्ञानी और योगी मुक्ति के धरातल पर पहुँच करके भी वो जो है अपने स्थिति को नहीं समझ पाते कि हमारी स्थिति क्या है, इसीलिए वे अपने को गलती से परमेश्वर से एक हो जाने की सोचते रहते हैं। गलती तो फिर गलती होती है, उनको पता ही नहीं कि हम क्या हैं, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम नित्य दास हैं, हम नित्य सेवक हैं। तो क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर से एक हो जाएं, यही पूर्णता है। ज्ञानी सोचते रहे, किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निस्संशय रूप से स्पष्ट रहता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति नितांत दास की है। और शुरू से ही वो इस बात को लेकर के चलता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और मैं कृष्ण, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण की सेवा के अलावा और मेरी कोई गति नहीं है। तो भक्त जो है, जिस अवस्था में शुरू करता है भक्ति, वो अवस्था ज्ञानी और योगियों को अंत में भी नहीं प्राप्त हो पाती, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ज्ञानी भी जो है मुक्ति के बाद भी वो सोचते हैं कि हम परम सत्य हो गए और भगवान के प्रति उनकी सेवा की भावना नहीं होती है, और फिर गिर जाते हैं। और जो योगी हैं वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम भी अब भगवान बन गए, तो वो भी गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्त जैसी विमल नहीं रहती, उनकी बुद्धि भक्त जैसी शुद्ध नहीं होती। तो जो भक्त है वो शुद्ध बुद्धि प्राप्त कर लेता है, शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा शुद्ध बुद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसके बल पर वो भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। और शुद्ध बुद्धि क्या है कि हम भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, तो हमें कृष्ण के बराबर नहीं बनना है, तो ये मूर्खता हमें नहीं करनी। तो इस मूर्खता को पहले से जान लेता है तो वो मूर्खता नहीं करता। इन ज्ञानी और योगी ये मूर्खता अंत में भी करते हैं। क्या मूर्खता करते हैं कि हम भगवान में एक हो गए हैं या हम एक हो जाएंगे। तो ये मूर्खता जो है भक्त शुरू से ही नहीं करता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी बुद्धि भक्त जैसी विमल नहीं होती है। विमल मतलब शुद्ध, है ना, उनकी बुद्धि भक्त जैसी शुद्ध नहीं होती है। किनकी? ज्ञानी और योगी की। योगी योग सिद्धि पाना चाहते हैं और ज्ञानी मुक्ति पाना चाहते हैं, ये उनकी बुद्धि भक्त जैसी शुद्ध नहीं होती है। दूसरे शब्दों में ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त ना हो ले नहीं हो लेते तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत 10.2.32 का कथन है, आरुहि कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यतो अनादृत विस्मदंग्रिया। इसका शुरू से श्लोक क्या है कि येन्यर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्त तो यस्त भावात् अभिशुद्ध बुद्धिया। कि हे कमल नयन, जो अपने को मुक्त समझते हैं, येन्यर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्त, अपने को मुक्त समझते हैं तो यस्त भावात्, उनकी भावना आपके प्रति अस्त हो गई है, उनकी भावना का अस्त हो गया है। पहले उनकी भावना थी आपकी सेवा के प्रति, क्यों, मुक्ति पाना है, और जब मुक्ति पा ली उन्होंने तब उनकी भावना, सेवा की भावना खत्म हो गई। क्या, अब तो हम भगवान बन गए, अभी शुद्ध बुद्धिया, तो बुद्धि उनकी शुद्ध नहीं है। तो वे भगवान की भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, या कोई भगवान की भक्ति करता है योग सिद्धि पाने के लिए, और जब उनको कुछ मुक्ति का धरातल मिल जाता है या सिद्धियां मिल जाती हैं तो उनका भाव अस्त हो जाता है, सेवा की भावना समाप्त हो जाती है कि अब भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, मुक्ति हमारा लक्ष्य है, भक्ति तो सीढ़ी है। वो क्या सोचते हैं, भक्ति तो सीढ़ी है और सीढ़ी के द्वारा हम छत में चढ़ गए तो अब सीढ़ी को छोड़ दो, तो भक्ति को छोड़ दो। तो यस्त भावात, अपने को मुक्त मान करके वे भक्ति को छोड़ देते हैं, उनकी भावना, भक्ति की भावना अस्त हो जाती है। अभिशुद्ध बुद्धिया, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है। आरुहि कृच्छ्रेण परम पदम तथा, तो बड़े कष्ट से उस परम पद में पहुंच करके भी पतन्त्यतो, नीचे गिर जाते हैं। तो बड़े कष्ट से वो परम पद यानी ब्रह्मभूत अवस्था में भी पहुंच गए, मुक्ति की अवस्था में भी पहुंच गए, लेकिन पतंग हो फिर नीचे गिर जाते हैं। अनादृत युष्मदंग्रिया, आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण। तो मुक्ति की अवस्था में भी वे भगवान के चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो माया की सेवा में आ जाते हैं। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है, सेवा, सेवा, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। तो मुक्ति की अवस्था में भी वो कृष्ण की सेवा का आदर नहीं करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं, तो माया की सेवा में आ जाते हैं। पुनर्मोसिक भावो, क्या नहीं समझे? पुनर्मोसिक भावो, फिर से चूहा बन जाओ। एक योगी था, एक कथा है बहुत प्रसिद्ध है, एक योगी था तो एक चूहा उसके चारों तरफ घूम रहा था, बहुत डरा हुआ है। तो योगी ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत डरे हुए हो? तो चूहे ने कहा कि महाराज, मैं बिल्ली से बहुत डर रहा हूँ, बिल्ली जो है मुझे खाने के लिए जो है घूम रही है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मार जा रही भावो, बिल्ली बन जाओ। तो बिल्ली बन गया, बिल्ली बन करके बड़ा प्रसन्न हो गया कि अब तो मुझे चूहे का कोई डर, बिल्ली का कोई डर नहीं है, अब तो मैं खुद बिल्ली बन गया। तो फिर आगे चल करके कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, तो फिर आ गया बिल्ली बन करके, महाराज मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा, श्वान भाव, कुत्ता बन जाओ। तो कुत्ता बन गया, अब बड़ा प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं कुत्ता बन गया, अब तो मुझे कुत्ते से कोई डर नहीं है, है ना। फिर शेर आया, तो शेर से डर करके आया, महाराज मैं तो बहुत डर रहा हूँ शेर। तो योगी ने कहा, सिंह भाव, शेर हो जाओ। तो शेर हो गया, अब तो कोई डर ही नहीं है। अब क्या सोच रहा है कि अब तो मुझे कोई डर ही नहीं है, अब योगी की भी आवश्यकता नहीं है, योगी को ही खा लेता हूँ मैं। तो योगी को खाने के लिए आ गया। तो योगी ने कहा, पुनर्मोसिक भाव, फिर से चूहा बन जाओ। तो यहाँ पर बताया गया है, पदंत दो अनादृष्ट स्मृतंग्रिया, कि मुक्ति के पद पर पहुंच करके भी आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो फिर से नीचे गिर जाते हैं, माया की सेवा में आ जाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, किंतु भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या गया, अन्या, अन्या का मतलब अनन्य भक्ति के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और विरक्ति के संयुक्त ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तीखा ज्ञान प्राप्त हुआ, उस तीखे ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव कोष को काट डाला, अपने सूक्ष्म शरीर के बंधन को काट डाला। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांग लिया था, चूंकि वे भगवान के सत्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। सत्यावेश अवतार मतलब भगवान के वैकुंठ धाम से ही आए, भगवान के भेजे हुए वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं कभी आते हैं, भगवान की सेवा में वैकुंठ में बहुत से पार्षद हैं जो चार भुजाओं के हैं, ये वो भगवान नहीं होते, वो भक्त होते हैं, चार भुजाओं के सब सेवक हैं भगवान के, चतुर्भुज रूप में होते हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं वो लक्ष्मी के समान होती हैं, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है, वो सेविकाएँ हैं, भगवान की दासियाँ हैं। तो वे जो है भगवान की सेवा में वैकुंठ में भी वो पति पत्नी रहते हैं। तो पृथु महाराज और अर्ची महारानी जो दोनों पति पत्नी हैं वो वैकुंठ से आए हैं और भगवान के द्वारा भेजे हुए आए हैं। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, वास्तव में उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतनी विधि का पालन करने की जरूरत नहीं थी। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे, फलतः उन्हें ज्ञान योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। अतः पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्षमा करिए, यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। तो वे तो जो है भगवान के भक्त हैं, उनका शरीर वैसे ही दिव्य है, तो उनको शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है और शरीर के बंधन से छूटने की आवश्यकता नहीं है, उनका भौतिक सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, उनका स्थूल शरीर भी भौतिक नहीं है, तो वे अपने उसी शरीर से भी जा सकते हैं वैकुंठ। जैसे ध्रुव महाराज गए तो उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, वो अपने उसी शरीर से वैकुंठ गए। तो भगवान के भी जो अवतार हैं वो भी शरीर नहीं छोड़ते हैं, श्री राम सरयू में प्रवेश करते हैं तो अपने उसी शरीर से ही वैकुंठ जाते हैं, ध्रुव महाराज जो भक्त हैं वो भी उसी शरीर से ही विमान में बैठ करके वैकुंठ जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है शरीर को छोड़ना। लेकिन पृथु महाराज ने ये जो किया है, ये सब कार्य क्यों किया है, लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने और अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। ये भक्ति के द्वारा उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसमें विरक्ति शामिल थी, उस ज्ञान तीखे ज्ञान की तलवार के द्वारा उन्होंने अपने संशय ग्रस्त जो है सूक्ष्म शरीर का बंधन है वो काट डाला। तो ये सब जो बातें हैं ये पृथु महाराज ने की, जो कि उन्हें आवश्यक नहीं था, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर भौतिक है ही नहीं, पहले से उनका शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन ये सब उन्होंने जो किया ये हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा हम वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें विरक्ति होती है और उस ज्ञान की जो है तीखी तलवार के द्वारा हम अपने संशयों को काटते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है विष्णुप्रिया देवी ने किया है, ये आप सुनिए। भगवत उपासना से उनका चित्त शुद्ध सात्विक हुआ, भगवत उपासना से उनका चित्त शुद्ध सात्विक हुआ, निरंतर भगवत चिंतन का प्रभाव ही कुछ ऐसा हुआ, निरंतर भगवत चिंतन का प्रभाव ही कुछ ऐसा हुआ। इस अनन्य भक्ति से वैराग्य और ज्ञान उपजे, इस अनन्य भक्ति से वैराग्य और ज्ञान उपजे, फिर तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार भी नष्ट किया, फिर तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार भी नष्ट किया। उपाधि भूत ये अहंकार सब संशय विपर्यय का आश्रय है, उपाधि भूत ये अहंकार सब संशय विपर्यय का आश्रय है, इस पर ही आधारित सब प्रपंच जगत ये रहता है। हरि बोल। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। हरि बोल। चालू कर दिया, बोलिए।
मेरा प्रश्न यह है कि जैसे यहाँ पर लिखा है संशय पदम, उन्होंने अपने ज्ञान से संशय पदम को विच्छेदन किया, भगवद्गीता में आपने बताया कि वहां पर लिखा कि संशय का विच्छेदन करते ज्ञान से, संशय पदम का विच्छेदन करना और संशय का विच्छेदन करना एक ही बात है, क्योंकि संशय का कंसेप्ट है और संशय पदम भौतिक पदार्थ,
संशय पदम निज जीव कोशम। यहाँ पर पृथु महाराज के लिए बताया गया है कि चिच्छेद उन्होंने छेदन किया, संशय पदम निज जीव कोशम, अपने जीव का कोश, अपना जीव जो जीवात्मा है तो वो घिरा हुआ है सूक्ष्म शरीर के आवरण के द्वारा, तो उन्होंने उसको खंडन किया और वो आध्यात्मिक शरीर उनका विकसित हुआ। और गीता में जो भगवान कह रहे हैं चित्वेनम संशयम, संशय का छेदन करके तुम खड़े हो युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन को जो संशय है वो युद्ध करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं तुम युद्ध करो, तो युद्ध करने में तुम्हें जो संशय हो रहा है और मोह है के कारण तुम्हारे संशय बढ़ रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, तो युद्ध करने में जो बाधक संशय है उसको तुम छेदन करो। तो इस तरह से अंतर है, लेकिन पृथु महाराज जो है अपने सूक्ष्म शरीर का ही छेदन कर रहे हैं, तो वो जो है भक्ति के द्वारा अपने आप हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है करने की। यहाँ प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर का बंधन है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, कुछ हमें इसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं है भक्ति के द्वारा। निगीर्णम अनलो यथा, जैसे आपने भोजन खाया और आपकी पाचन अग्नि अग्नि अच्छी है तो आपको अलग से दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पचाने के लिए आप अलग से दवाई खाएं। तो भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके भौतिक बंधन को अपने आप ही जला डालेगी। जैसे पाचन शक्ति बड़ी मजबूत हो जाए, अच्छी प्रबल हो जाए, तो आपने जो भी कुछ भी खाया सब पच जाएगा। तो भक्ति जो है इतनी शक्ति है कि उसको ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भक्ति ही जो है उसके सब भौतिक बंधन को जला डालती है। तो यहाँ पर जो बताया गया तो प्रभुपद बड़ा अच्छा, मतलब तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात बता रहे हैं। जिन कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण अर्जुन के साथ हैं तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है अर्जुन को कि भौतिक बंधनों से छूटे हैं, वो पहले से छूटे हुए हैं। लेकिन युद्ध करने में उनको जो संशय हो रहा है तो भगवान कह रहे हैं इस संशय को तुम छेदन करो ज्ञान की तलवार के द्वारा। ठीक है, आप इन पर अब हाँ, क्योंकि और भी लोगों के प्रश्न हैं ना, एक इनको फिर दूसरा इनको आप बाद में पूछ सकते हैं। ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब क्या है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ किसके लिए, मुक्ति पाने के लिए, भगवान में एक होने के लिए, और जब मैं भगवान में एक हो जाऊँगा तो फिर भक्ति को छोड़ दूंगा, ज्ञान मिश्र भक्ति। ठीक है, कर्म मिश्र भक्ति का मतलब है मैं भक्ति कर रहा हूँ भौतिक भोगों को पाने के लिए, और जब भौतिक भोग प्राप्त हो जाएंगे तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, आप समझे। और शुद्ध भक्ति तो प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है, श्री चैतन्य का आंदोलन है, ये शुद्ध भक्ति का आंदोलन है कि जिसमें आप शुरू से ही इस बात को लेकर चलते हैं कि भक्ति नहीं छोड़ना है। आपकी मुक्ति की इच्छा हो सकती है, आपकी भोगों की इच्छा है हो सकती है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि मुक्ति के बाद भी आपको भक्ति नहीं छोड़नी है, और भोगों की प्राप्ति के बाद भी आपको भक्ति नहीं छोड़नी है। ये भक्ति जो है आपकी एकमात्र सुरक्षा है। तो ये शुद्ध भक्ति से आपने शुरू की है भक्ति। तो अब ये कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, यद्यपि इसमें भोगों की इच्छा हो सकती है और मुक्ति की भी इच्छा हो सकती है, आप समझ रहे हैं। इसलिए भक्ति की जो नींव है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम जो है बार बार इसी बात का अभ्यास करते हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप ही है, हम शुद्ध रूप में भगवान के नित्य सेवक हैं। तो सेवक के अलावा और हमारी कोई सही स्थिति नहीं है, सुरक्षित स्थिति नहीं है। तो जब इस बात को आपने समझ लिया तो भक्ति की जो शुद्ध भक्ति की नींव है वो आपकी मतलब बन गई। अभी शुद्ध भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति की जो नींव है वो आपने अच्छी प्रकार से डाली है। तो जो आचार्य हैं हमारे, तो वो जो है हमें शुद्ध भक्ति की नींव बनाते हैं कि ये नहीं समझना है कि मुक्ति के बाद आप जो है भगवान बन गए या आपको भुक्ति भोग प्राप्त हो गए, ऐश्वर्य प्राप्त हो गए तो आप भगवान बन गए। तो ये नहीं विचार कभी करना कि आप भगवान के समान या भगवान से बढ़ करके हो गए या भगवान से मिल गए। तो ये विचार आपको जो है हमेशा के लिए निरस्त करना है। ठीक है, आपका प्रश्न, इनको माइक दीजिए, माइक चालू है। आठ प्रकार की सिद्धियाँ, आठ प्रकार की सिद्धियाँ क्या हैं, इनका प्रश्न है कि आठ प्रकार की सिद्धियाँ क्या हैं। आठ प्रकार की सिद्धियाँ प्रभुपाद ने समझाई हैं कहीं पर, तो वो मिल जाएंगी, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ये सब कहीं पर प्रभुपाद ने समझाई हैं। तो अभी तो इतना समय नहीं है। अणिमा मतलब बहुत छोटा, अणु की तरह हो जाना, तो अणिमा सिद्धि है। इसका अर्थ है कि आप इतने शरीर, आपका इतना शरीर इतना छोटा हो सकता है कि आप छोटे से सुराख से भी आप निकल सकते हैं, अणिमा सिद्धि के द्वारा। अणिमा सिद्धि है हनुमान जी, हनुमान जी ने जो है बहुत छोटा शरीर धारण किया, शरीर बना लिया अपना और लंका में प्रवेश करे, कोई उनको देख नहीं पाए, या वो कोई जादूगर भी, उनके पास भी सिद्धियाँ, अगर अणिमा सिद्धि है तो अपने को बक्से में बंद करा लेते हैं, भाई ताला लगा दो और फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये भौतिक, हाँ ये सब भौतिक हैं, लेकिन सिद्धियाँ आएंगे। ठीक है, और कोई
वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हो तो उसी को ज्ञान ही समझते
हो, ज्ञान, हाँ जब प्रभुपाद ज्ञान की निंदा करते हैं, जब प्रभुपाद ज्ञान की निंदा करते हैं तो वो ज्ञान का मतलब है जो केवल मुक्ति प्राप्त कराएगा आपको, कि आप मुक्त हो गए। ये मुक्त होने के बाद क्या कार्य करना है आपको, वो जब आपको नहीं मालूम है तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, है? वो ज्ञान उसको कहा जाता है लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो, तो दिव्य ज्ञान क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, हमें ये समझना है, और भगवान के गुणों का हम जो है जब गुणगान करते हैं तो दिव्य ज्ञान है। लेकिन अगर आपको इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप शरीर नहीं हैं, हैं शरीर से अलग हैं और नित्य अविनाशी हैं और आपको शरीर के बंधन छूटना है, तो ये ज्ञान जो है आपका पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान है। तो इस ज्ञान की प्रभुपाद निंदा करते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हैं और हम नित्य अविनाशी तत्व हैं और हमें छूटना है, जन्म मरण के बंधन छूटना है। लेकिन फिर क्या करना है छूटने के बाद वो नहीं जानते, आप समझ रहे हैं? तो निर्विशेष ज्ञान उसको बोलते हैं, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। लेकिन भगवान की भक्ति से रहित वो जो ज्ञान है वो शोभा नहीं देता। अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो निरंजन ज्ञान है वो, लेकिन वो शोभा नहीं देता। अच्युत भाव वर्जितम, भगवान की भावना से रहित हो, उस ज्ञान के द्वारा आप मुक्ति भी पालेंगे, हैं? लेकिन तदस्थ भावात, तो यस्थ भावात, ये भाव अस्त हो जाता है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव अस्त हो जाता है, ठीक है ना? तो वो ज्ञान जो है शुद्ध ज्ञान नहीं है, ठीक है ना? और कोई, हाँ आप बोलिए।
जैसे
हाँ, यहाँ इसको यही समझना चाहिए कि जो मन के ऊपर भौतिक आवरण है तो उसको भौतिक मन बोलते हैं, और जब भौतिक आवरण समाप्त हो जाता है तो वो शुद्ध मन, हाँ, तो जीवात्मा का वो शुद्ध मन प्रकट हो जाता है। ऐसी बुद्धि के ऊपर भौतिक आवरण है तो उसको भौतिक बुद्धि बोलते हैं। तो भौतिक बुद्धि का मतलब यही है कि जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसके ऊपर भौतिक आवरण चला हुआ है, उसको हमें हटाना है। अहंकार हमारा शुद्ध है अहंकार, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, नित्य दास, शुद्ध अहंकार, उसके ऊपर भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, हैं, और अपनी उपाधियाँ बना लेता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, हैं, और फिर मुझे भोगना है, मैं भोगी हूँ, मैं नियंत्रक, मैं नियंता हूँ। तो ये सब जो है ये भौतिक अहंकार। तो भौतिक आवरण ही जो है जब आध्यात्मिक अहंकार के ऊपर आ जाता है तो उसको भौतिक अहंकार बोलते हैं। तो अहंकार को नष्ट नहीं करना है, मन को नष्ट नहीं करना है, हमें शुद्ध करना होता है, ठीक है? हाँ जी, भक्तों के पास सिद्धियां आ जाती हैं लेकिन वे उनको स्वीकार नहीं करते। अगर भक्ति में वो बाधक हैं तो सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं लेकिन भगवान की सेवा में अगर कोई आवश्यकता हो तो सिद्धि को जो है वो प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन वे इस बात का जो है खुलासा नहीं करते, इस बात को जो है वो बताते नहीं किसी को, कि फिर लोगों की लाइन लग जाए कि भैया इनके पास सिद्धि है, चलो हमारी बीमारी ठीक करो। तो लोग जो है फिर भक्ति में जो है बाधा ही पैदा होगी। तो इसलिए वो जो है केवल शिक्षा देते हैं, श्री चैतन्य के शिक्षाएं देते हैं वो, और उसी में ही जो है जो सिद्धियां उनकी होती हैं वो सेवा करती हैं उनकी। तो सिद्धियां उनकी सेवा करती हैं, प्रभुपाद की भी जो है सेवा में है, भगवान की जो है शक्तियां प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया लेकिन कृष्ण ने रक्षा की। तो अगर कृष्ण स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो वो सिद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं अपने, ठीक है? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।
जय।